परिव्राज के चार्य स्तोत्र सत्र श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के अनंत कोटि वैष्णव वृंद के नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास दिगौर भक्त वृंद के श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन के श्री श्री कृष्ण बलराम के श्री श्री राधा श्याम सुंदर के श्री श्री निताई गौर सुंदर के समवेत भक्त वृंद के श्री श्री गुरु एम गौरांग की। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंध दीनबंध जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतर्पंग मम मंद मतर्गति मत सर्वस्व पदां भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंध चार अध्याय 18 श्लोक 18। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वत्सेना पितरः अर्यम्णा कव्यं क्षीरं अधुक्षत आमपात्रे महाभागः श्रद्धया श्राद्धदेवतः वत्सेन पितरोर्मम्या वत्सेन पितरोर्यम्णा कव्यं क्षीरमधुक्षत आमपात्रे महाभागः श्रद्धया श्राद्धदेवतः वत्सेन पितरोर्यं या कव्यं क्षीरमधुक्षत आमपात्रे महाभागः श्रद्धया श्राद्धदेवतः वत्सेन पितरोर्यम्या कव्यं क्षीरमधुक्षत आम पात्रे महाभागः श्रद्धया श्राद्ध देवतः वक्तेन पितरोर्यम् कव्यं क्षीरमधुक्षत आम पात्रे महाभागः श्रद्धया श्राद्ध देवतः वक्तेन पितरोर्यम् कव्यं क्षीरमधुक्षत आम पात्रे महाभागा पितरोर्यम्रा क्षीरमधुक्षत आम पात्रे महाभागा काव्यं क्षीरमधुक्षत आम पात्रे महाभागा श्रद्धया श्राद्ध देवता दूसरा अर्थ हो जाएगा कव्यम ऐसे बोल रहे बछड़े से पितर पितृलोक के वासी अर्यमणा पितृलोक के देव अर्यमान से कव्यम पितरों को दी जाने वाली बलि क्षीरम दूध अधुक्षत निकाला आम पात्रे मिट्टी के कच्चे पात्र में महाभागा अत्यंत भागशाली श्रद्धया अत्यंत श्रद्धा समय श्राद्ध देवता मृत परिजनों के सम्मान में किए जाने वाले श्राद्ध कर्म के मुख्य देवता। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, श्राद्ध कर्म के मुख्य देवता एवं पितृलोक के भाग्यशाली निवासियों ने अर्यमा को बछड़ा बनाया। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा सहित मिट्टी के कच्चे पात्र में कव्य पितरों को दी जाने वाली बलि दुह लिया। तात्पर्य। भगवद्गीता 9:25 में कहा गया है पितृनियान्ति पितृव्रता है। जो लोग परिवार कल्याण में रुचि रखते हैं वे पितृव्रता कहलाते हैं। पितृलोक नाम का एक लोक है और इसका प्रधान विग्रह अर्यमा कहलाता है। वह कुछ कुछ देवता जैसा है जिसे प्रसन्न कर लेने से परिवार के प्रेतों को स्थूल शरीर प्राप्त होता है। जो पापी होते हैं और अपने परिवार घर गांव या देश के प्रति आसक्त रहते हैं उन्हें भौतिक तत्वों से निर्मित देह प्राप्त नहीं होती, वरन मन अहंकार तथा बुद्धि से युक्त सूक्ष्म शरीर मिलता है। जिन्हें ऐसी सूक्ष्म देह प्राप्त होता है होती है वे प्रेत कहलाते हैं। यह प्रेत स्थिति अत्यंत कष्टप्रद होती है क्योंकि भूत प्रेत बुद्धि मन तथा अहंकार होने के कारण भौतिक जीवन व्यतीत करना चाहता है किंतु स्थूल शरीर न होने से वह ऐसा नहीं कर पाता है और भौतिक तुष्टि के अभाव में वह उपद्रव मचाता है। पारिवारिक सदस्यों विशेष रूप से पुत्र का यह कर्तव्य है कि अर्यमा को या भगवान विष्णु को पिंड दें। भारत में अनंत काल से मृत व्यक्ति का पुत्र गया जाता है और वहाँ पर एक विष्णु मंदिर में अपने प्रेतात्मा पिता को पिंड देता है। ऐसा नहीं है कि सभी के पिता प्रेत बनते हैं किंतु भगवान विष्णु के चरणों पर पिंडदान दिया जाता है जिससे यदि किसी के परिवार का कोई व्यक्ति प्रेत बने तो उसे स्थूल देह प्राप्त हो, किंतु यदि कोई विष्णु प्रसाद प्राप्त करता रहता है तो उसके प्रेत होने या मनुष्य से निम्न योनि में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। वैदिक सभ्यता में श्राद्ध कर्म होता है जिसमें अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति से भोजन दिया जाता है। यदि कोई विष्णु के चरण कमलों पर या उनके पितृ लोक के प्रतिनिधि अर्यमा को श्रद्धा समेत पिंड प्रदान करता है तो उसके पूर्वजों को भौतिक शरीर प्राप्त होता है जिससे वे अपने हिस्से का भौतिक सुख भोग सकते हैं, अर्थात उन्हें प्रेत नहीं बनना पड़ता। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। दोहन का प्रसंग चल रहा है और आज हम को दो श्लोक दोहना है। 17 श्लोक है। गंधर्वाप्सरसो दुक्षण पात्रे पद्ममये पय वत्सम विश्वावसुं कृत्वा गंधर्वम मधुसौभगम। गंधर्व लोक तथा अप्सरा लोक के निवासियों ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया और कमल पुष्प के पात्र में दूध दुहा। इस दूध ने मधुर संगीत कला तथा सुंदरता का रूप धारण किया। बहुत चीज दुहा जा चुका है, अभी बहुत बाकी ही है। गंधर्व लोक के निवासी भी आकर के पृथ्वी से दोहन किए। वो लोग पात्र बनाए कमल को, कमल का पुष्प इसी को पात्र बनाए और ये पात्र से थोड़ा संकेत मिलता है। जैसे कमल में सौंदर्य भी है और गंध भी है, देखने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है और वह कोमल भी होता है। तीन चीज उसमें है। तो गंधर्व लोक के लोग भी तीन चीज का दोहन किए। एक अर्थ एक दृष्टि से अर्थ किया जाए तो गांधर्वम मधुसौभगम, गांधर्व का अर्थ है गंधर्व विद्या को, मतलब गान विद्या को दोहन किए, और मधुर माधुर्य का दोहन किए, और सौभगम सुंदरता का दोहन किए। ये लोग विश्वावसु को बछड़ा बनाए। से प्रारंभ से आप पढ़ रहे हैं कि जिससे ग्रुप के जो प्रधान हैं, ये भगवान के विभूति हैं, तो उनको बछड़ा बना करके वहां के निवासी वह ग्रुप अपने उपयोगी चीज का दोहन कर रहा है। तो यहां गंधर्व और अप्सरा ये लोग दोहन किए, बछड़ा बने विश्वावसु। वैसे गंधर्वों में प्रधान चित्ररथ है, भगवान विभूति में उन्हीं का नाम गिने हैं, लेकिन कभी कभी दो लोग प्रधान होते हैं। अभी हम लोग मंदिर की स्मृति सुन रहे थे तो धनंजय प्रभु कह रहे थे कि मैं इंटरनल प्रेसिडेंट था, एक्सटर्नल प्रेसिडेंट अक्षयानंद जी थे। विश्वावसु और चित्ररथ दो प्रमुख हैं। और गान करने में विश्वावसु का नाम प्रसिद्ध है, ये अधिक गान करते हैं, तो इसी से इनको रखा गया है। और गांधर्वम मधुसौभगम, ये तीन शब्द दिया जा रहा है, वो मधुर गीत और सुंदरता दो चीज का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। या कुछ आचार्य मानते हैं कि ये कमल में तीन चीज होता है, तो यहाँ भी तीन चीज का संकेत मिलता है, सुंदर गान और मधु से अर्थ है गंध और सुंदरता। जो गंधर्व लोक के लोग हैं या अप्सराएं हैं, तो उनका सौंदर्य भी अच्छा होता है, देखने में सुंदर लगते हैं, गान भी अच्छा करते हैं, और गंध भी होता है। देवलोक के जो स्त्रियां हैं तो उनके शरीर में गंध होता है, कमल का गंध होता है। मध्वा प्रभु के पास मूल भागवत होगा, एक श्लोक में जब उद्धव जी गोपियों की प्रशंसा कर रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि गोपियों को जो सौभाग्य मिला वह सौभाग्य तो उन स्त्रियों को भी नहीं प्राप्त हुआ जिनके शरीर में कमल का कांति भी है और कमल का गंध भी है। हम थोड़ा निकालिए ना, 47वें अध्याय का श्लोक होगा, दशम स्कंध। रुचा शब्द है, रुचि कांति के लिए उसमें आया। तो इसमें इतना ही है कि श्लोक निकाल दें, तो दूसरा अध्याय निकाल दिए ना, ठीक है, हम देख लें। स्वर जो सीताम नली गंध रुचाम कुतोन्या, ये उद्धव जी की उक्ति है, कह रहे हैं कि नायम श्रियोंग नितान्त रते है प्रसादम, स्वर जो सीताम नली गंध रुचाम कुतोन्या, रासोत्सवे भुजदंड गृहित कंठ लब्धा सीताम ये उदगार ब्रज वल्लवीना। और भगवान के कंठ में अपना हाथ डाल करके जो ब्रज की गोपियां उनके साथ नृत्य की गान की, तो यह सौभाग्य तो श्री को भी है, लक्ष्मी जी को भी है, नितांत रहते हैं जो हमेशा भगवान की सेवा में रहती हैं। और श्री जी को नहीं ये मिला, और स्वर जो सीता जो स्वर्ग की स्त्रियां हैं उनको भी यह सौभाग्य नहीं मिला। तो स्वर्ग की स्त्रियों का विशेषण दे रहे हैं नलिन गंध रुचाम, नलिन मतलब कमल, तो उनके शरीर से कमल का गंध भी होता है, रुचि मतलब कामना। तो इसी को मैं कह रहा था, तो कुछ आचार्य इस पर लिखे हैं कि वे गंध का भी दोहन किए, जो हो वे सौंदर्य और मधुर गान की विद्या का दोहन किए। अब आगे के श्लोक में कह रहे हैं, वत्से न पितरो यमड़ा कव्यम क्षीर मधुक्षत आम पात्रे महाभागा श्रद्धया श्राद्ध देवता। जो श्राद्ध देवता है वे लोग अर्यमा जी को बछड़ा बनाए और कव्य का दोहन किए। कव्य कहते हैं जो पितरों को बलि प्रदान किया जाता है उसको कव्य कहते हैं। बलि कई एक प्रकार का होता है, ऐसे सामान्य रूप से बलि कहिए हवन कहिए तो वो कई एक लोगों के लिए होता है, लेकिन जब कव्य शब्द कह देते हैं तो यह एकदम विशेष शब्द है, स्पेसिफिक है कि ये पितरों को जो बलि प्रदान किया जाता है उसको कव्य कहते हैं। तो कव्य का दोहन किए, और कहां दोहे इसका बर्तन क्या है, आम पात्र कच्चा बर्तन में, आम का अर्थ होता है कच्चा। ये पितरों के जो बलि दिया जाता है तो ऐसा आज भी प्रचलन है कि कच्चे बर्तन में ही देते हैं। हम लोग देखते हैं जब श्राद्ध कर्म किया जाता है तो जो ब्राह्मण होते हैं वहीं मिट्टी का बर्तन बनाते हैं और उसी में वो पिंडे दान करते हैं। तो यह वैदिक चीज है, ऐसा लिखा गया है कि पितरों को कच्चे मिट्टी का कच्चा बर्तन ही बहुत प्रिय है, पक्का बर्तन प्रिय नहीं है। अपक्व मृन्मयम पात्रम पितृणाम वल्लभम सदा, मृन्मयम मिट्टी का पात्र अपक्व कच्चा, तो यही पितरों को हमेशा बहुत प्रिय है। तच्च हस्ते न घटितम ग्राह्यम चक्रोद्भवम नहीं, एक तो कच्चा बर्तन और वो भी हाथ से बनाया हुआ। कुछ बर्तन है कि चाक पर बनाते हैं और इसके बाद पका देते हैं, तो वह पितरों को प्रिय नहीं है, वो कभी प्रिय नहीं है। इसी से श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण लोग अपने से ही बर्तन बनाते हैं, उसी में पिंड दान करते हैं। तो इसी को कह रहे हैं कि मिट्टी के कच्चे बर्तन में वे लोग कव्य का दोहन किए। और एक और श्लोक है, कुलाल चक्र निष्पन्नम आश्रम दैविकम न तत्, कि जो कुम्हार चक्र पर बर्तन बना दिया वह तो आसुर हो गया, वो कभी दैविक नहीं है, वो देवता के लिए नहीं है। तदेव हस्त घटितम दैविकम पैतृकम तथा, इसी से देवता के लिए या पितर के लिए हाथ से बनाया बर्तन ही उपयुक्त है। और किसी किसी बात का आशय समझना चाहिए, यहां कह रहे हैं कि कुलाल चक्र निष्पन्नम आसुरम दैविकम न तत्, ये कुम्हार चक्का पर बना दिया कोई बर्तन तो आसुर हो गया, वो असुर से संबंधित हो गया, वो देवता के कार्य में नहीं प्रयोग होगा। लेकिन इसका आशय समझना चाहिए, कुछ खास कृत्य है उसके लिए ये सब बात कही जा रही है। जैसे अभी परसों दिन भक्त अभक्त की चर्चा आ गई, तो आशय समझना चाहिए कि देवता लोग नितांत रूप से भगवान के भक्त हैं। देवता का अर्थ ही होता है भगवान का भक्त। विष्णु भक्ता सुरा प्रोक्ता असुरस्त विपर्य, सुर और असुर का यही भेद किया जाता है। तो इतना जो सत्य है, लेकिन फिर भी देवताओं को कभी कभी अभक्त कह ही दिया जाता है। आप श्रीमद् भागवतम के महात्म को पढ़ेंगे, पद्म पुराण से लिया गया है, पद्म पुराण में है, तो वहां वर्णन है कि जब संस्थित परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी बैठ गए, तो स्वकार्य कुशला सुरा, और देवताओं के विषय में कह रहे हैं जो अपने कार्य में बहुत कुशल हैं, तो वे सुधा कुंभ अमृत का कलश लेकर के आए और प्रस्ताव रखे। आखिर परीक्षित महाराज के तो सामने मृत्यु की समस्या है ना, इनको अमृत पिला दीजिए, यह मृत्यु की समस्या दूर हो जाएगी, और कथा हमको दीजिए, कथा सुधा प्रयच्छ, हमको कथा सुधा दीजिए। तो इस प्रकार जब विनिमय की बात कहने लगे, तो सुखदेव गोस्वामी के मनोभाव को व्यक्त कर रहे हैं सुत गोस्वामी, तो साफ शब्द यही दे रहे हैं कि अभक्तांश विज्ञाय, वे समझ गए कि देवता अभक्त हैं। साफ शब्द यही है अभक्तांश विज्ञाय, तो इसका अर्थ समझना चाहिए। किसी किसी शब्द का एक जैसा ही प्रयोग सदैव नहीं होता है, तो अब समीकरण कम से कम दो पर बनाया जा सकता है कि भाई जहां मैनेजमेंट की बात है, लीला की बात है, तो देवता निश्चित रूप से भक्त हैं, लेकिन कथा हाल में तो सुखदेव गोस्वामी बोले या न बोले, मन में तो सोच ही लिए कि ये भक्त हैं, भक्ति शून्य मतलब कथा के अधिकारी नहीं है, तो इतना ही आशय हुआ। तो यहां सुखदेव गोस्वामी जो कह रहे हैं कि अभक्तांश विज्ञाय, उनको अभक्त समझ करके, तो उसका आशय इतना ही है कि कथा के अधिकारी नहीं है, श्रद्धा की कमी है, इनकी दृष्टि कथा के प्रति दूसरी है। उसी तरह कभी कभी कंपेरेटिव तुलनात्मक दृष्टि से कोई बात कह दी जा रही है। यहां इस श्लोक में यह बात कही गई है कि जो चक्का पर बर्तन बना दिया जाता है वो तो आश्री हो गया, दैविक नहीं हुआ। पितर लोगों को कच्चा बर्तन और हाथ से बनाया हुआ बर्तन यह बहुत प्रिय है, तो इसी को बर्तन बनाए और इसी बर्तन में कव्य का दोहन किए। अर्यमा जी को बछड़ा बनाए। अर्यमा जी का थोड़ा परिचय जानना चाहिए। आप गीता में पढ़ते हैं पितृणाम अर्यमा चास्मी, पितरों में मैं अर्यमा हूं, तो पितरों के प्रधान हैं अर्यमा जी, और अर्यमा जी अदिति के पुत्र हैं। आप इस सृष्टि के विषय में जानते हैं कि सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था, ब्रह्मा जी दक्ष को जिम्मेवारी दिए, तो एक बेटा को सृष्टि के वृद्धि की जिम्मेवारी दी है, दक्ष अपना प्रारंभ किए, 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, लेकिन नारद जी 10 बात ने उनको विरक्त बना दिए, लेकिन फिर भी दक्ष निराश नहीं हुए, फिर 1000 पुत्र उत्पन्न किए, लेकिन उनको तो बस एक बात में विरक्त बना दिए नारायण जी। लेकिन वो तो दक्ष हैं, सृष्टि में बहुत एक्सपर्ट हैं, फिर भी निराश नहीं हुए, 60 कन्याओं को उत्पन्न किए, 60, अब 60। अब कन्याओं को कौन, स्त्रियों को कौन वैराग्य भरेगा? जो वैराग्य भरने जाएगा कहीं तो वही नष्ट हो जाएगा। तो दक्ष विवाह किए 10 धर्माय, 10 लड़कियों का विवाह, 10 पुत्रियों का विवाह धर्म से किए, और कश्यप जी से 13, 26। संस्कृत का शब्द है 26, संस्कृत का अजब गणित है, 26 मतलब 2 6, तो कितना हुआ? नहीं 2 6 मैंने 6 और 6 नहीं 6 प्लस 6 12, 26 का हुआ 12 अर्थ, लेकिन इसका अर्थ 13 निकाला गया। ये कैसे अर्थ हो गया? 12 जिसमें है वह संख्या, जिस संख्या में 12 है मतलब 13, शब्द दिया गया है 26 लेकिन अर्थ किया गया है 13। तो 13 एक बार विवाह किए होंगे और 2-2 का विवाह फिर से किए होंगे, ऐसे वर्णन किया गया। चंद्रमा को 27 दिए, तो जो 13 पुत्रियों को कश्यप जी से विवाह किए तो उसमें अदिति ज्येष्ठ होगी या प्रधान है। अदितिर दितिर दनु काष्टा अरिष्टा सुरसा इला मुनि क्रोध वसा तत्ता सुरभि शर्मा तिनी, ये लड़कियों का नाम गिनाया गया। तो अदिति के कई एक पुत्र हैं, उसमें कुछ प्रधान पुत्र हैं, उनका नाम गिनाया गया है। विवस्वान अर्यमा पुष्टा त्वष्टा त सविता वग धाता विधाता वरुण मित्र शक्र उरुक्रम। प्रधान पुत्रों में अर्यमा जी भी हैं, विवस्वान जी हैं, अर्यमा, पुषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता विधाता वरुण मित्र इंद्र और उपेंद्र। तो अर्यमा जी के भाई हैं वामन भगवान, इंद्र भी भाई हैं, सूर्य भगवान भाई हैं। तो अर्यमा जी माता पिता के दृष्टि से बहुत महान है और ये पितरों के प्रधान हैं। अर्यमा जी के प्रधानता इस बात से आप समझ सकते हैं कि जमराज जी का पोस्ट 100 वर्ष तक वो बहुत सफलतापूर्वक संभाले। ऐसे श्रीमद् भागवतम में प्रसंग आता है कि विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न किए और कुछ उत्तर को सुन करके भगवान में भक्ति उत्पन्न हो गई, जाते ही के भक्त गोविंद तेव्यस्य ऊपर राम है, और प्रश्नों से उपरत हो गए और अपने भाई के पास आ गए, धृतराष्ट्र के पास आ गए। तो वहां लिखा गया है कि कंचित काल मथावासी, कुछ काल तक वहीं रहे, सत्कृतः देववत सुखम। युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न थे और बहुत सत्कार किया जा रहा था, देवता के समान उनका सत्कार था, तो सुखपूर्वक वहां रहे। कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई तो क्या सुख के लिए वहां बस गए? देवता के समान सम्मान मिल रहा था, रेस्पेक्ट के लिए, सम्मान के लिए वहां रुक गए? तो कह रहे हैं कि ना, भ्रातुर ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत, अपने जेठ भाई के, अपने बड़े भाई के कल्याण के लिए वहां रुके। और सर्वेषां प्रीतिमा वहन, और लोग भी प्रसन्न हो रहे थे, विदुर जी बहुत दिन पर आए थे तो सब लोग प्रसन्न हो रहे थे, उनकी प्रसन्नता के लिए वहां रुके। लेकिन सबसे मुख्य कारण था भ्रातुर ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत, अपने बड़े भाई के कल्याण के लिए भी कल्याण कैसे कर रहे थे, ज्ञान वैराग्य का उपदेश देकर के। प्रश्न होगा कि एक तो बड़े भाई हैं, उम्र में भी बड़े हैं, और ये विदुर तो शूद्र हैं, तो उम्र में भी छोटे और शूद्र होकर के भी कैसे साहस की ज्ञान वैराग्य का उपदेश देने के लिए। तो इस क्रम में कह रहे हैं कि सच्चाई यह है कि विदुर जी तो धर्मराज ही हैं। और फिर प्रश्न होगा कि धर्मराज जी क्यों यहां आ गए, और धर्मराज जी आ गए तो उनका कार्य कौन देखा। तो साफ वहां लिखा गया है कि अर्यमा जी इस कार्य को किए, अर्यमा जी किए और बहुत ठीक ठीक किए। वो श्लोक में है कि अभिभ्रत अर्यमा दंडम यथावत अगतकारिषु। अर्यमा जी जमराज जी का कार्य 100 वर्ष तक किया और यथावत, कोई उसमें दोष नहीं हुआ, जैसे उसको पूरा करना चाहिए वैसे के। मतलब है कि धर्मराज की जमराज जी के पद के लिए क्वालिफाइड हैं, यथावत जैसा जो पाप किया था वैसा किए। बल्कि जमराज जी से तो त्रुटि हो गई थी, उसी के चलते उनको शूद्र कुल में आना पड़ा था। एक बार उनसे गलती हो गई थी, एक बच्चे को दंड दे दिए थे। आप लोग कथा जानते हैं कि एक बार की बात है कि कुछ चोर चोरी करके भाग रहे थे और पीछे से सिपाही भी दौड़े, तो चोर जा करके एक ऋषि के मांडव्य ऋषि के आश्रम में रुक गए, वहीं छिपने का प्रयास किए, लेकिन सिपाही लोग राज कर्मचारी उनको पकड़ लिए, देख लिए। तो अब चोरों को पकड़ रहे थे तो अरे वहां मांडव्य ऋषि भी थे, तो उनको भी वो भूल से समझ लिए कि चोर के ही ग्रुप के हैं, उनको पकड़ कर ले जाकर के वो हाजिर कर दिए। राजा दंड सुना दिया सबको सूली पर चढ़ाने का, लेकिन किसी तरह राजा को पता चल गया कि ये चोर नहीं है, इसमें तो एक ऋषि है, तो तुरंत सूली से उतार दिए। लेकिन मांडव्य ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ और सीधे जमराज के पास गए कि हमको सूली पर चढ़ाया गया, किस कर्म का फल था। तो जमराज जी उनको बतलाए कि एक बार आप खेल खेलते समय टीटी सलभ के शरीर में कुश के नोक से छेद किए थे। तो मांडव्य ऋषि को बड़ा क्रोध आया कि तुम एज पर विचार किया, छोटे बच्चे कोई गलती कर देते इतना बड़ा दंड दिया, तुम इस पोस्ट लाइफ नहीं हो। तो हम यह कह रहे हैं कि जमराज जी से भी गलती हो जाती है, तो उन्हीं के साथ से ये विदुर जी के रूप में आए थे। लेकिन उस समय अरिमा जी के विषय में लिख रहे हैं कि यथावत अधिकारी जो पाप करने वाले हैं ठीक ठीक दंड दिए। तो अरिमा जी जमराज के पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं और स्थान भी नजदीक में ही है। तो अर्यमा जी बछड़ा बनाए और कह रहे हैं कि महाभागा श्रद्धया श्राद्ध देवता। अर्यमा जी पितर लोक के मुख्य व्यक्ति हैं, तो अर्यमा जी बछड़ा बने और दूसरे पितर लोक कव्य को कव्य का दोहन किए। तो इस क्रम में श्रील प्रभुपाद जी कव्य का बहुत महत्व बतला रहे हैं। जो पितरों को पिंडदान किया जाता है तो उसकी बहुत महिमा है। मान लीजिए कि हमारे पितर किसी कारण से प्रेत योनि को प्राप्त हो गए हैं, तो गया में जाकर के पिंडदान करने से मुक्त हो जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि सब पितर सबके पितर प्रेत हो ही जाए। जो भक्ति कर रहा है, अच्छा कार्य किया है, तो वह प्रेत ज्योति को कभी नहीं प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी इस कार्य का बहुत महत्व दिया गया है। कदाचित हमारे कुल में कोई प्रेत ज्योति को प्राप्त हुआ है तो उसको मुक्त करना आवश्यक है। पुत्र को अपत्य कहा जाता है, ये कई तरह से रक्षा करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है तो उसकी जिम्मेवारी है, श्राद्ध देना चाहिए, क्योंकि पितरों की इच्छा होती है। कभी कभी ये प्रश्न किया जाता है कि जो भक्त हैं तो उनको क्या आवश्यकता है पिंडदान करने की। निश्चित रूप से आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। जो भक्त हैं वो ऐसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि सर्वात्मना या शरणम गतस्य, जो सब प्रकार से भगवान मुकुंद के शरणागति को स्वीकार कर लिया है, तो किसी देवता के प्रति, किसी पितर के प्रति, किसी मनुष्य के प्रति ऋणी नहीं है, कोई ऋण नहीं है। तो इसलिए परिहृत्य कर्त्यम, अब उसका जो कर्तव्य है श्राद्ध इत्यादि जो और जो कर्तव्य है उसको छोड़ करके और भगवान के भक्ति कर रहा है अनन्य भाव से, सर्वात्मना सब प्रकार से प्रणागति को स्वीकार कर लिया है, तो किसी प्रकार के दोषी का भाग नहीं, भागी नहीं है। लेकिन ध्यान देना चाहिए सर्वात्मना शब्द पर कि सब प्रकार से भगवान के शरणागति को स्वीकार कर लिया। कभी कभी हम लोग भूल करते हैं, मन में अहंकार आ जाता है कि हम तो भगवान के भक्त हैं, अब हमको पितर के प्रति देवता के प्रति ये कृत्य करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन थोड़ा विचार करना चाहिए कि हम कितना भगवान की शरणागति स्वीकार किए हैं। बुरा न माने तो मैं कहूंगा कि पुत्रों का ध्यान रहता है, पत्नी का ध्यान रहता है, और जब पितर की बात आती है तो भक्त हो जाते हैं, सर्वात्मना भगवान के भक्त हो गए। ये थोड़ा ध्यान रखना कि निश्चित रूप से अब जो सर्वात्मना भगवान का भक्त है उसको किसी का अनुसंधान ही नहीं है, तो उस पर किसी भी कर्तव्य छोड़ने का कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अपने स्थिति को समझना चाहिए, यह भावना नहीं जाती है कि मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, उसके लिए कितना फालतू फालतू चीज देते रहते हैं, और पितरों के लिए तो अब एकदम बड़े भक्त हो जाते हैं। और देखिए महाराज युधिष्ठिर भी श्राद्ध कर्म किए, अब महाराज युधिष्ठिर से ऊपर के भक्त जो हैं तो उनकी बात दूसरी है। स्वानाम उदक मिच्छता, क्योंकि पितरों की इच्छा होती है, उनकी चाह होती है, तो इसलिए ये श्राद्ध कर्म का बहुत महत्व है। और यहाँ श्रद्धया श्राद्ध देवता, जो पितरों के देवता हैं, ये इस कर्म के देवता हैं, प्रसाइडिंग डिटी हैं, या पितरों के लिए श्राद्ध देवता शब्द दे रहे हैं। ये श्राद्ध देवता और श्रद्धया, वे श्रद्धा से दोहन के श्राद्ध देवता, ये श्राद्ध देवता का क्या अर्थ हुआ। देखिए जो कार्य श्रद्धा के साथ किया जाता है उसी को श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध कहने से ही यह ध्वनित है कि यहां श्रद्धा की अपेक्षा है, फिर भी श्रद्धया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका आशय यह है कि इस कर्म में विशेष श्रद्धा होनी चाहिए। पितरों को जो कव्य प्रदान करना है, पिंडदान करना है, तो इसमें विशेष श्रद्धा के साथ इस कृत्य को करना होता है। इसी से श्रद्धया श्राद्ध देवता। एक इस बात को ऐसे समझाया गया है कि वे गाय कहने का अर्थ ही होता है चलने वाला, जो चल रही है उसी को गाय कहा जाता है। गो गच्छति, गो का अर्थ ही होता है गच्छति, जो चलता है, लेकिन फिर भी गो गच्छति, केवल गो कह दिया जाए तो लोग नहीं समझ पाएंगे कि चलने का इसमें अर्थ आ रहा है। गो कहने से तो केवल गाय अर्थ लेंगे, तो इसको स्पष्ट करने के लिए कभी कभी प्रयोग किया जाता है गो गच्छति, गाय जा रही है, तो स्पष्ट करने के लिए जैसे कहा जाता है वैसे ही श्राद्ध देवता, वे देवता जिनको श्रद्धा से कुछ प्रदान किया जाता है, ये शब्द में ही सन्निहित है, फिर भी श्रद्धया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे ध्वनि है कि इस कर्म में विशेष श्रद्धा की आवश्यकता है। तो ये लोग कव्य का दोहन किया, जो भी पितर लोग थे, एक तो मुख्य प्रिसाइडिंग व्यक्ति हैं इस कर्म से, उनको श्राद्ध देव कहा जाता है। इसके साथ ही महाभागा यह बहुवचन में बोल रहे हैं, इसका अर्थ है कि पितर लोग के और जो लोग थे सब कव्य का दोहन किए। पर मैं थोड़ा श्राद्ध पर जोर दे दिया तो एक समस्या खड़ी हो जाएगी कि जब ही शुद्ध भक्ति की बात आती है तो साफ परिभाषा है, अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, ज्ञान और कर्म से अनावृत होना चाहिए। लेकिन रूप गोस्वामी की परिभाषा पर ध्यान देना चाहिए कि अन्याभिलाषिता शून्यम, जहां अभिलाषिता की बात है वहां तो शून्य डाल दिए, लेकिन ज्ञान और कर्म की बात किए तो शून्य नहीं कर रहे हैं, इतना ही कह रहे हैं कि आवृत नहीं होना चाहिए। इसका आशय यह है कि कोई कोई आवश्यक कार्य है कि शुद्ध भक्तों को भी उसको करना चाहिए, लेकिन भक्ति उससे आवृत नहीं होनी चाहिए। इसका आशय इतना है कि उस कार्य में जो नित्य नैमित्तिक या स्मार्ट कर्म भी है तो उसी में बहुत श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। कुछ कार्य ऐसा है, इतना महत्वपूर्ण है कि कम से कम लोक संग्रह के लिए उसको अवश्य करना चाहिए। कोई कोई ऐसा कार्य है कि भक्त लोग छोड़ देंगे तो समाज में वो कर्म लुप्त हो जाएगा, इससे समाज को बहुत भारी क्षति होगी। तो लोक संग्रह के लिए कोई कार्य कर रहा है तो अनन्य भक्ति की या उत्तमा भक्ति की क्षति नहीं होती है। तो कुछ ऐसा कार्य है जिसको कर्तव्य दृष्टि से कर देना चाहिए। जब सामान्य लेवल पर है, बहुत उन्नत नहीं स्थिति है, तो हर कार्य का उपेक्षा ही नहीं करना चाहिए। देखिए सिद्धांत यह है कि कोई कोई कार्य है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। भक्ति करते करते एक स्थिति आती है कि हमारा उधर ध्यान ही नहीं जाता है, वह स्वतः छूट जाता है, तो कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन उधर ध्यान है, हमारा भक्ति का लेवल उतना उन्नत नहीं है, तो कम से कम लोक संग्रह के लिए, समाज की व्यवस्था के लिए कुछ कुछ कार्यों का त्याग नहीं करना होता है, उसमें एक श्राद्ध कर्म भी है। इससे लाभ होता है कि जिसको प्रेत शरीर मिल गया है तो उससे मुक्ति मिल जाती है। प्रेत शरीर का अर्थ है कि सूक्ष्म शरीर होता है, वासना का उदय होता है, लेकिन वासना की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, और वासना की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो क्रोध के मारे परिवार के लोगों को तंग भी करते हैं। तो अपने हित में भी अच्छा है कि कुछ पितरों को संतुष्ट किया जाए, और पितरों के संतुष्ट करने का श्राद्ध भी एक विधि है। लेकिन यदि कीर्तन किया जाए, भक्ति किया जाए, तो पितर लोग संतुष्ट हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो उससे भी कोई अब अनिष्ट की शंका नहीं है। तो खूब कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, और ऐसा नहीं कर रहे हैं तो श्राद्ध भी कर देना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रश्न नहीं है ना, समय हाँ
भगवान का प्रसाद मतलब
पितरों को भी। हाँ, जो प्रसाद देने पर जो प्रसाद खाते हैं, ये बात है, जो रोज प्रसाद खा रहे हैं तो वे कभी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होते हैं। तो जो भक्त लोग हैं तो उनके तो शक्ति है, वो तो प्रसाद खा रहे हैं तो प्रेत योनि का कोई प्रश्न ही नहीं। देखिए यह स्मृति का विषय है, स्मृति ग्रंथ का, और हमको स्मृति का एकदम ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी श्राद्ध के लिए सबसे अच्छा स्थान गया है और पितृपक्ष, आश्विन पक्ष का जो कृष्ण पक्ष होता है पहला पक्ष, वह सबसे श्रेष्ठ समय है और सबसे अच्छा स्थान गया है, लेकिन और भी भारत में कई एक स्थान है, जैसे पुष्कर है, कुरुक्षेत्र है, बनारस है या केसी घाट है, बहुत स्थान है कि जहाँ पर पिंडदान किया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा स्थान गया है। हाँ, वो तो वहीं पूछना चाहिए, वो ब्राह्मण लोग उसका विधान जपाएंगे। हमें स्मृति कर्म के विषय में एकदम ज्ञान नहीं है। हाँ, बलि शब्द संस्कृत का है, कोई बलि के लिए सीधे गिफ्ट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। बलि मतलब ये काट करके बकरा देते हैं यही नहीं, बलि का अर्थ है गिफ्ट, हाँ, उपहार। संस्कृत में बलि का अर्थ है गिफ्ट, ऐसे ले सकते हैं। हमें स्मृति एकदम का एकदम ज्ञान है, भीतरों के लिए मैं नहीं कहा। आप देखिए, मैं जो दूसरे प्रश्न का उत्तर वो पूछ रहे थे कि मान लीजिए कि जैसे एक श्राद्ध का आइटम बचता है, क्या और कोई आइटम है कि जो आपको ध्यान देना चाहिए। उस क्रम में मैं कहा कि कोई विशेष तिथि आता है तो उसका सेवन करना पड़ता है, कुछ स्थान का सेवन करना पड़ता है। तो तिथि में जैसे रामनवमी है तो ग्राहकों को उस दिन जरूर कुछ स्पेशल कुछ अटेंशन देना चाहिए। कई एक तिथि है, उन तिथि को एकदम इग्नोर नहीं करते हैं।